أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان نام، آج دسمبر 1979 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السجدہ کی آیت 14 سے ہو رہا ہے. 3:2:1:4 سابقہ آیات میں کہا یہ گیا تھا کہ جو لوگ قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں، یہاں تو اپنے آپ کو بہت بڑا یہ کہتے ہیں بھنے ہاں سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ اس عدالت میں حاضر ہوں گے تو کہا کہ مخاطب، تو اگر اس نقشے کو سامنے لائے کہ یہ اپنے جرائم کی فرشت کو خود اپنے سامنے دیکھ کر، خود اسے پڑھ کر، خود اس کا اعتراض کر کے کس قدر ندامت سے سر لہرائے ہوئے ہوں گے، کس قدر شرمندگی اور بے بسی کا عالم ہوگا. اس وقت کہیں گے کہ خدا ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس بھیج دے تو دیش سے ہم کس طرح اچھے کام کرتے ہیں. ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہی بتا دیا گیا تھا کہ زندگی کا دھارا پیچھے کی طرف نہیں لگتا، اسے یا تو آگے بڑھنا ہے یا ایک مقام پر رک جانا ہے، پیچھے نہیں لوٹ سکتے. تو اس وقت ان سے کہا جائے گا اگلی آیت کے ہم آگے آئے 14 پر کہ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں بہت بہترین یاد دہانی کرائی گئی، بار بار تمہیں انکار کیا گیا، وارننگ دی گئی، بتایا گیا، اس کے باوجود تم نے قانون مقاصد عمل کی اہمیت سے بالکل تغافل، بے اعتنائی برتی، تم نے کچھ پرواہ ہی نہیں کی، اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ انسان کے ہر کام کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا رہتا ہے. بار بار تمہیں اس کی یاد دہانی کرائی گئی اور ہر بار تم نے اس سے وہاں لاپرواہی برتی. تو آج پھر کیفیت یہ ہے، یہ دونوں جگہ لفظ آیا ہے، نسیتم اور نسیناتم، یہ بلاغت ہوتی ہے زبان کی. اور عربی زبان میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک لفظ کے کھیل کے اعتبار سے معنی بدلتے جاتے ہیں. پہلی تو یہ چیز ہے کہ بار بار تم سے کہا اور تم نے اس کے بے بنائی بڑھتی، اور ہم نے جو کہا ہے وہی وقت جہاں آیا اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی حفاظت کی طرف سے بے پرواہی بڑھتی. تو آج سے ہم تمہیں تو حفاظت نہیں دے سکتے، ہم محفوظ نہیں تمہیں رکھ سکتے، ہم پناہ نہیں دے سکتے، ہم پناہ دیں گے نہیں. یہ مجاز کے معنی ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں یہ جس قدر بھی مقاصد عمل کی باتیں ہیں قرآن ان معنی سے یہ لیتا ہے، وہ حفاظت میں لینا کیا اور کسی کو جہنم میں بھیجنا کیا، وہ تو ہر عمل کا فطری نتیجہ ہے جو انسان کے سامنے آ جاتا ہے. اس واسطے اب تو تمہیں جو کچھ کیا تھا جیسے ہمارے الفاظ میں اس کی سزا بھگتنی ہی ہوگی، اس سے مفر نہیں ہے. بار بار تمہیں کہتے رہے اور تم نے اس حقیقت، اس حقیقت کا ایمان لانا جسے کہتے ہیں، تم نے اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی، سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، اس کے اوپر تسلیم ہی نہیں کیا. اس کو کون تسلیم کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں کہا انما یؤمنو بآیات الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اگلی آیت میں بھی اس کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ میں ابھی تلاوت کر دیتا ہوں، معنی کچھ ایک ٹکڑے کے الگ الگ سامنے آئیں گے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ उन लोगों की जो कवानी में खुदाबंदी को हकीकत की हकीकत तस्लीम कर लेते हैं, ये उनकी चंद खसूसियात बताई गई है। चंद क्या कुरान तो कहा जहाँ कहीं एक खसूसियत भी बताता है वो मुनफरद होती है, उसमें इंफरादियत होती है, बाकी इंसानों से वो लोग मुनफरद अलग खड़े मुमताज हसीयत में नजर आ जाते हैं। मोमिन की पहचान यही है, मोमिन बालाए हर बाला करे गैरत वरना ताबद हम करे। कुरान जो उसके वक्त बताता है तो उससे तो कोई गैर मोमिन दूसरा उससे हम दोस्त भी नजर नहीं आता, कह जाए कि उससे कहीं आगे जाए ऊंचा नजर आए। कौन है ये लोग जिन्ना मजरों में नज आते नगदी में देहा हर उसे जगह। पहली चीज तो ये है, उनके सामने जब कवानीन खुदाबंदी को लाया जाता है तो वो उनके सामने सुख जगह झुक जाते हैं, सिजदा रेज हो जाते हैं, सरे तस्लीम हम कर लेते हैं। इस मुकाम पे मैं अर्ज करूँ, मैं जो बार बार कहा करता हूँ ना कि कुरान करीम तफरी से आयात से समझ में आता है, एक बात एक जगह वो कहता है उसकी वजाहत दूसरे मकाम से करता है, कहीं उसमें इजाफा करता है, कहीं उसमें इस्तेमाल करता है, तो इसके समझने का तरीका उसने खुद कहा है कि तफरी से आयात से हम बातें बयान करेंगे। कोई मौजू जो तुम्हारे सामने एक मकाम पे आए, ये देखो कि कुरान करीम के दूसरे मकामात में उसके मुतल्लिक क्या कहा गया है। जो तमाम मकामात सामने रख लेंगे आप तो सारी बात वाज़ेह हो जाएगी, कोई मकाम कुरान का अज़ीज़ान मन मुश्किल नहीं रहता, बशर्ते कि जो तरीक उसने बताया है उसके मुताबिक उसको समझने की कोशिश की जाए। ये वो चीज है जिसे हमारे यहाँ तबदील कहते हैं, ये चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट के एतबार से मौजू के एतबार से बाब बाब करना किसी चीज का। और ये थी वो दुश्वारी के हारे के, इसको कहाँ उम्र भर की मेहनत से करेगा। बहरहाल मैंने तो अपने इस जुनून के ताजे ये सब कुछ किया, मुझे कुरान से इश्क है, तो मेरी किताब तब्दील कुरान जो है वो यही मौजूद है उसका। यकीन वालियों की आपने देखा होगा एक मौजू के मुतल्लिक उसमें उनवानात उसमें तो 2-3 हजार है, एक उनवान के ताजे कुरान ने जहाँ जहाँ कुछ कहा है सारे हवाले उसके दिए हुए हैं। तो मैंने अर्ज किया है कि कुरान के समझने का तरीका ये है, जहाँ कहा उनकी खसूसियत ये है मोमिन की कि जब उनके सामने कवानी या खुदाबंदी आते हैं तो फौरन झुक जाते हैं, सीधा रेज हो जाते हैं उनके सामने। तो अब जहन में ये चीज आई कि ऐसी ही खसूसियत बताई है कि यही उनके सामने कुरान की वो आयतें पेश की या कुरान के कवानी पेश किए, बगैर समझे बूझे वो फौरन उनके सामने झुक जाए। यहाँ तो सिर्फ खर्रु से जदन है, लेकिन तस्वीर से आयात के मातहत दूसरा मकाम देखिए 25:73, वहाँ ये देखिए यही जो अल्फाज आए हैं, यहाँ है खर्रु सुजदन झुक जाते हैं, वहाँ ये है मोमिन की सिफत ये है, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयात रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना लम यख़िर्रू। यहाँ यह कहा था जो खर्रू हर रूप उद्दन घुप जाते हैं, यहाँ ये इसके साथ कोई इजाफा नहीं, इजाफा इस मकाम से है। देखिए मोमिन की सिफात क्या है, सिफात ये है कि उनके सामने और तो और कवानीन खुदाबंदी भी आयात खुदाबंदी भी उनके सामने पेश की जाए तो वो उनके सामने अंदर गहरे गुंगे बनकर नहीं झुकते। क्या बात, दुनिया की और कोई चीजें और बातें और असूल और कवानीन और कवायद इंसानों की बातें देख कर नहीं, खुदा के कवानीन और उसकी बातें उसकी तालीम उसकी आयात वो उनके सामने लाई जाती है। तो ये भी सही कहा जाए तो ये खुदा की आयत कुरान की आयत है, खुदा का फरमान है। तो हमारे जहनों में तो ये है ना कि बेखबर टूट पड़ा आतिफ़ नमरूद में, वो कहता है कि मोमिन की सिफत ये है खसूसियत ये है कि और तो और खुदा के कवानीन और आयात भी उसके सामने आए तो उससे भी वो अंधा बहरा बन के नहीं झुकता, गौर फिक्र और इल्म बसीरत की उसको तस्लीम करता है। یہ ہے اہمیت قرآن کریم کی روح سے حفظ اور علم اور بصیرت اور فہم اور شعور اور تدبر اور تفکر. خدا کی آیات بھی وہ اندھا بہرا بن کے نہیں اطمینان کرتا, اور اطمینان تو پھر اسی ایمان سے ہوتا ہے نا کہ جو علی وجہ البصیرت لایا جائے, جس بات کو علم و بصیرت کی روح سے سمجھا جائے, وہاں سے پھر کوئی شخص اس کو کھلا ہی نہیں سکتا, اس کے پاؤں میں لذت آ ہی نہیں سکتی کہ اس نے یوں ہی جذبات کے طور پر اندھا بہرا بن کے اس کو تسلیم نہیں کیا ہوتا. اس نے علی وجہ البصیرت سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھتے بھالتے اعتراضات کو سامنے رکھ کر جب وہ اس طرح سے ایک یقین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ واقعی الحق یہی بات ہے, پھر وہ ان کو تسلیم کرتا ہے. یہ ہے مومن کی کسات, یہ ہے مومن کی خصوصیت. تو اب جو یہاں آیا کہ انما المؤمنون بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا, کہ یہاں تو اتنا ہی تھا کہ جب ان کے سامنے آیات خداوند بھی آتی ہیں تو وہ جھک پڑتے ہیں ان کے سامنے, سر تسلیم ہم کرتے ہیں, سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سجدا اس میں یہ تھا نا احتمال اس بات کا کہ بغیر سمجھے بوجھے ہی کیونکہ خدا کا فرمان ہے اس واسطے ان کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں, لیکن اس نے دوسرے مقام پہ واضح کر دیا کہ نہیں, مومن خدا کی آیات کے سامنے بھی اندھا بہرا بن کر نہیں جھکتا. ادو اللہ علی بصیرت انا ومن اتبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کریم میں حضور کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو علی وجہ البصیرت دعوت دیتے ہیں, اسے تم آگے حضور کی مبارک مبارک ادو اللہ, میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں, اور آگے ہے انا ومن اتبع میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میرا اتباع کرے گا اس کا بھی یہی سیوا ہوگا کہ وہ علی وجہ البصیرت دعوت دے گا تمہیں اسلام. اس لیے دعوت دے گا علی وجہ البصیرت تو پھر جو سامنے مخاطب ہے وہ بھی تو علی وجہ البصیرت ہی مانے گا نا, اس کو مومن کہا ہی اسے گیا ہے کہ جو خدا کے کلام پر اس کی تعلیم پر علی وجہ البصیرت ایمان لائے. سوچیے تو صحیح ایمان ایمان کتنے ہیں ہم میں سے جو اس طرح سے ایمان لائے, ہم تو ایمان لائے نہیں, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہم نے وہ جو فارم ہوتا ہے اس سے مسلمان کے سانے میں لکھ لیا اسلام, اتنا ہی ہے نا جو ہم کرتے ہیں. وہ تو ایمان لانے والے جو ہیں ان کے متعلق بھی یہ کہتا ہے, گندے دہرے بند کر نہیں مان لیتے, اور ہماری زندگی میں تو یہ اوکیزن ہی کبھی نہیں آتا ایمان لانے کا یا ایمان سے انکار کرنے کا. یہ ایمان یہ نہیں ہے کہ اب خود جیسا بھی انسان ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے, یہ ہونا پڑتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ, ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ آج خود مومن نہیں ہوتا, وہ مسلم نہیں ہوتا, وہ کافر بھی نہیں ہوتا, وہ صرف انسان ہوتا ہے. آج حیران ہوں گے جو میں سہن لگاؤں قرآن کو کفر کا لفظ بھی غرب کے معنی میں استعمال کرتا ہے, کھیل کے معنی کفارا کرتا ہے. جو جس نے کفر اختیار کیا تداشی جو کچھ ہوتا ہے وہ تو انسان نہیں ہوتا, وہ تو حیوان ہوتا ہے کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے. اب اسے خود یہ بننا پڑتا ہے, انکار کرتا ہے سرکشی بڑھتا ہے تو کفا یا قرون. یہ بڑی چیزیں اور چل رہے ہیں عیلا قرآن کی, یہ غرب جو استعمال کرتا ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں, دوسری طرف وہ کہتا ہے ایمان لاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو بات چیت ہے یہی میں اللہ کو مانتا ہوں, مانتا ہوں والی بات تو ہے ہی والی, ایمان لاتا ہوں کیسے, یہ اس طرح علاوہ بصیرت سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر علم و بصیرت کی روح سے کان پھٹک کر تھوک بجا کر پھر حقیقت کو حقیقت ماننا ہے, اس کو کہتے ہیں ایمان لانا. یہ لایا جاتا ہے आज खुद कोई मोमिन नहीं होता, कोई काफिर नहीं होता, और लाया जाता है सुमन बुकियान नहीं, अंधेदारे मांगते नहीं। पहली चीज तो मोमिन की सिफत ये बताई, दूसरी ही सद्दहू बेहमद रब्बी हूँ, ये दूसरी चीज है। पहली चीज जो कुरान में कही है, बल्कि इफ्तिताहिया में कही है, प्रोफेस में जो कही है कुरान से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमदियत जो है वो खुदा के लिए है, और इसलिए है वो मुस्तहिक से हमदो सताइश कि वो रब्बिल आलमीन है, वो जुमला कायनात की रुबूबियत का जिम्मेदार है। तो हमद और सताइश का हकदार वो है जो रुबूबियत के माने होते हैं। आम लफ्जी तर्जमा तो नक्व नुमा किया जाता है, आपको याद होगा ये सारे अल्फाज आ चुके हुए। नस्व नमाज सिर्फ इतनी नहीं, रब कहते हैं कि जो किसी शय को उसके नुक्ते आगाज से उसकी तकमील तक पहुंचाए, जो कुछ उसने बनना है वो बना दे, और इस तमाम मराहल में उसके लिए वो कुछ बनने के सामान और असबाब और जराए मुहैया करता चला जाए, उसे रब कहते हैं। तो पहली चीज उसने ये बता दी कि और तो और खुदा भी मुस्तहिक हमदो सताइश है, तो इसलिए कि वो रबूबियत आलमीनी का जिम्मेदार है, और किसी एक फिरके एक ग्रोह एक खानदान का नहीं, बल्कि तमाम कायनात का उसमें आलमगीर इंसानियत खुद आ जाती है। आलमगीर इंसानियत की रबूबियत का जिम्मेदार ये कुछ वो करता है, तो फिर उस वो कहता है कि वो मुस्तहिक हमदो सताइश है। जो ये नहीं करता उसे हक हासिल नहीं है कि अपनी तारीफ कराए। अब मैंने हम की जगह लफ्ज बोल दिया, हमारे यहाँ आमतौर से गारंटी का लफ्ज होता है, इसके मुकाबले में वो कुछ और लोगों का जिक्र करते हैं। यूरीदून जो हमें दिमाग लम या फालू, वो चाहते हैं कि उन बातों के लिए उनकी तारीफ की जाए जिन्हें वो करते नहीं है। हमें इस बात में पेश की गई है, यहाँ पहली चीज तो ये है कि कुछ करने के सिले में कुछ तारीफ होगी, रिएक्शन होगा, और करना है रबूबियत, ये है बुनियादी चीज। मोमिन क्या करते हैं, तब्बहू बेहम्द रब्बिहि, खुदा की ये जो जिम्मेदारी है रबूबियत की, इंसानों की दुनिया में इंसानों के हाथों से पूरी होती है। अब हमारे यहाँ तो आसानी हो गई ना, हर चीज जो गम मिला उसे गमे जाना मना दिया, जो भी लफ्ज आया यहाँ मजहब की दुनिया में ले आए उसको फर्रू सुजा दम सीधे में गिर जाते हैं। यहाँ आपको मालूम है ये पुरानी क्रीम में बाद मुकाम आते हैं जहाँ कहते हैं तलावत करते हुए जब वहाँ पहुँचो तो एक कर रखते तो वहाँ सीधा कर दिया जाए, तो ये जो हुक्म था खुदा का वो तो पूरा हो गया ना, ये सूजा दू सीधा कर दिया, यहाँ से उठे तो काम उठी वहाँ मस्जिद में जाके सीधा कर दिया, सीधा तो ये हो गया। कवानीन खुदाबंदी के सामने सरब सजूद होना जिसे कहते हैं, सरे तस्लीम खम कर देना, उसके सामने झुक जाना, उनको तस्लीम कर देना, ये था सजदा। अभी मैं अर्ज करता हूँ, बस जाता है आगे जिसने इसकी वजाहत की है, मैं अभी सबदा हूँ, सबदा हूँ तर्जमा के बाद साहब तस्लीम करते हैं खुदा की हमद की। नमाज तो पढ़ ली, उसके बाद आपको पता है कि फिर इस फरीदे से कैसे होता बड़ा हुआ जाता है, 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाह अकबर, ये तस्बीह हो गई। चलो जी एल मौका से आता है, दूसरा फरीदा जो था वो भी अदा हो गया। ना जुबान अरबी से पूछा कभी, ना कुरान से पूछा कि है क्या बात। अपने यहाँ तस्बीह गई वो दानों वाली जो इस्लामी है ही नहीं, बुद्धों के यहाँ से ईसाइयों के यहाँ आई, ईसाइयों के यहाँ से हमारे यहाँ भेजी, इसका नाम रख लीजिए तस्बीह। सबा या सब्बाह के माने होते हैं किसी मकसद की हसूल के लिए इस तरह से दौड़ धूप करना जैसे घोड़ा ये चाल जो होती है ना, इसके लिए कोई टेक्निकल है, पूरे पूरे दोनों हाथ उठा के, और इसीलिए वो जो तैराक होता है वो तैराकी उस किस्म की होती है जिसमें वो पूरे हाथ में मारता है। ये अरब इसके लिए इस्तेमाल करते थे, ये लफ्ज बुनियादी तौर पे है। घोड़े की ये चाल जो है उसे कहते हैं सदा। सदा के माने है किसी मकसद के हसूल की खातिर पूरी पूरी तवानाइयों से तवो दौ करना। अब ये तवो दो का लफ्ज इसके लिए आ सकता है, दौड़ दूब करना जिसे आप करें, पूरी पूरी तवानाई। क्या बात थी लोगों की, उन्होंने देखा ये घोड़े की ये चाल या तैराक की ये कैसी है। उसमें एक्सट्रीम एंड तक जाता है आदमी या वो घोड़ा, यहाँ तक जाकर वो कोशिश की जाए किसी मकसद के हसूल के लिए, वो होती है सभा। तस्बीह उनके माने जो है वो सलसल ही कुछ करते चले जाए सारी जिंदगी में। लोग आसान तो नहीं किया मुसलमान होना, मुसलमान होना क्या जिंदा रहना ही आसान नहीं है अजीजा ने मन, वो तो कभी हम ख्याल ही नहीं करते। सबा है ना सांस लेना, सारी जिंदगी करना पड़ता है, पूरा पूरा सांस लेना पड़ता है। वो जो एक मर्ज आ जाता है घने का जिसमें पूरा सांस नहीं लिया जाता, आधा सांस आता, देखिए किस तरह से जिंदगी और मौत के दरमियान भटका होता है आदमी। पूरी कोशिश ही करता सभा की और सारी उम्र करता है। वो है फिजिकल लाइफ जो है इंसान की, उसके अंदर कशी ये इधर आता है इंसान अपनी जो जिंदगी इसकी इंसानियत की जिंदगी है उसमें अखबार खुदाबंदी की सतार और इतवा में इस तरह कोशिश करना कि उसमें पूरी पूरी तवानाई खर्च हो जाए, इंतहाई दर्जे की कोशिश कर सही से काम लेना, मुसलसल काम लेना। ये हुआ सब्बहू काहे के लिए, हमदे रहते हैं ताकि दुनिया ये बात देख ले कि ये मोमिनों की सिफतें आ रही है कि वाकई ये वो जमात है जो खुदा की इस जिम्मेदारी को यूं पूरा करती है। और हम्द के माने तो आपको मैंने बताया था ना शुरू में ही, उसके माने तारीफ करना नहीं है। अरबी जुबान में मदह का लफ्ज आता है इसके लिए, जैसे हम आमतौर पर प्रेज अंग्रेजी में तर्जुमा इसका कर दिया, ये प्रेज भी नहीं है, ये तारीफ करना भी नहीं है, ये मदह और सताइश भी नहीं है, ये हम्द है। हम्द की बुनियादी चीज ये है कि किसी चीज का इस कदर दिलकशी से तकलील दिए हुए महसूस शक्ल में ऐसे सामने आना कि बेसाख्ता जुबान से निकले वाह वाह वाह, सिर्फ इस तरह से कहने वाली जो बेसाख्ता उसके लिए दफ निकलता है उसके लिए ये हम तलब। ये मोमिनीन की खसूसियात बताई जा रही है कि वो खुदा की वो जो जिम्मेदारी है रबूबियत और तरबियत उसे इस अंदाज से सर अंजाम दें, उनका निजाम इस किस्म का बने कि कोई देखने वाला जब उसको देखे तो बेसाख्ता जुबान के लिए आए कि वाह क्या निजाम है और क्या ये इंसान है और क्या कुछ ये कर रहे हैं। सब बहु बेहमद रबे हूँ वह हम ला या सच बे नूम, बड़ा अजीब ये नुस्खा है। आप हजरात में भी जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जरा ज्यादा सोचिए, झुक दम तो है यही काफी है, ये वो झुक जाते हैं उसके सामने। अगली चीज यही वह हम ला यस तक दे हूँ, आम इसके जो माने किए जाते हैं कि वो तकबर नहीं करते। ये जो किबरियाई है इसके बगैर तो मोमिन मोमिन हो ही नहीं सकते। किबरियाई अपनी इंतहाई शक्ल में जो हक हासिल है वो तो खुदा का है, लेकिन खुदा की सिफात को अपने अंदर मुनक्कस करने वाले अकदारे खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करने वालों के लिए कुरान ने कहा है अंतमिल आलम, बुलंद तरीन दर्जा जो है इंसानी दुनिया के अंदर वो इन्हें हासिल है, आलम है, यहाँ शुक्र भेजी डिग्री है, ये इनसे ऊंचा इनसे बड़ा इनसे ज्यादा किबरियाई का मालिक कोई हो नहीं सकता खुदा के नीचे। तो ये किबरियाई जो है ये तो सिफत है मोमिन। कुरान ने तो ये कहा है कि वो ही नहीं सकता कि ये गैर मुस्लिम जो है कभी मोमिन के ऊपर गालिब आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। और कीजिए अजीजा ने मान, ये एक खास जमात है जिनका ये जिक्र हो रहा है, ये 90 करोड़ नहीं है जो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, जिधर से देखो आवाज आ गई आ रही है, वो मार गए, वो ले गए, उसने तबाह कर दिया, ओ मुत्तहिद हो जाओ, करते रहो दुआएं मांगते रहो। वो कह रहा है कि ये हो नहीं सकता कि गैर मुस्लिम इन मुसलमान या मोमिनीन के ऊपर कभी गालिब आ जाए, इसका तकिस्ती के काम ये है। लिहाजा ये जो हमारे यहाँ है किबरेना तकब्बुर, इसको इतना मजमून करार दिया गया है कि ये तो सैदान का काम तकब्बुर अजाजील गफार कर, सबसे बड़ा जिंदगी का मकसद या कुर्ब खुदावंदी या मुकर्रब होना वो ये है कि इंसान अपनी खुदी को मैं को मार दे, नफ खुशी जो है ये सबसे बड़ी रूहानी है। ये क्या चीज, एक तरफ तो मोमिनीन की खसूसियत ये बताई गई कि हर किस्म की किबरियाई और बुलंदियां दुनिया के अंदर उन्हें हासिल करें, कोई दूसरा गैरत हम न गैरत बर न साबत हम करें, मोमिन बलाए हर बाला करें, गैरत बर न साबत हम करें, कुरान के अल्फाज का तर्जुमा, मोमिन हर बाला से बाला तर है, उसकी गैरत को हम सर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जाए तो कोई इससे ऊंचा हो, जो कुरान के अल्फाज आलाम का तर्जुमा है। तो कैफियत तो उस मोमिन की ये बताई, और यहाँ है वह हमला या तकबरून, किबरियाई या किबर जिसे आप कहते हैं, वो उनमें नहीं होता। कहाँ आया, खरू सिद्धर बनाया, अब यहीं से तुम्हारे ये वाजिया हो जाते हैं कि वो कवानीन खुदाबंदी जो हैं उनसे सरकशी नहीं बरतते, उनके सामने झुकते हैं, उनसे सरकशी नहीं बरतते। ये नहीं है कि वो दुनिया में बाकी अकवाम के मुकाबले के अंदर भी हो जाए पथ नसीबदा, जो आए तेरे उतु लंघदा जाए रोंदा जाए नसीबदा साथ, इन कंडे बिना भी ना डाल के, ये जो चीज है खुद ही खुदा दा जाए, ये सारी चीजें आपके यहाँ ये जो दूसरों के यहाँ से लिया हुआ तसव्वुफ है, ये सारी उसकी तारीफ बड़ी साजिश है इस कौम के सामने। ये जिसे आप खुद ही कहते हैं अपने यहाँ, उसका तर्जुमा अगर आप मैं कर लेना तो कुछ बात समझ में आ जाती है। जी कि ये क्या है, जब आप कहते हैं ना मैंने ये इसको पकड़ा, आपका हाथ पकड़ रहा होता है, ये मैं क्या है जिसे आप कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वादा किया, मैंने उसको ये काम करना, 10 बरस पहले मैंने कहा था ये उससे, आज भी मैं यही कह रहा हूँ, ये मैं क्या है, यही मैं ही तो वो चीज है जिससे आप हैं। मैं कहना छोड़ दीजिए तो आपकी अपनी हकीकत हो जाती है, और वहाँ तालीम में है तो सबको ठीक है, मैंने डालते छुड़ी मालूम है आपको नहीं भाव, तो समझते हैं कि बकरी मैं करती है इसको गवा कर देते हैं, हाँ जी इस किस्म के बनाए गए उनको मैं डालते थे, यानी मैं को खत्म करना जो है ये है आपके यहाँ का शख्सियत, आपकी शख्सियत खत्म हो जाएगी, रियलिटी खत्म हो जाए, मैं ही बाकी क्या है तो आप बाकी क्या कर रहेंगे, हैवान मैं नहीं कह सकता। और मैंने अगली दफा से कहा था आपसे गूगल का वो कॉल बहुत चला, वन हु कैनट से आई कैनट से डाउ, जो मैं नहीं कह सकता वो खुदा को नहीं पुकारता, मैं तो बड़ी चीज, यहाँ ये चीज जो कुरान ने कही, एक तो वो सिजदा रेज होना है उसके सामने झुकना, ये मैं के खिलाफ नहीं खड़ी थी। दूसरी चीज कही कि वो किबरियाई नहीं उनमें आप, उसकी तो सिफत यह थी। क्या फर्क किया कुरान ने इसमें? साइकोलॉजी वाले इसको समझे जरा। एक होता है सेल्फ, एक होता है ईगो, दोनों ही मैं होते हैं साइकोलॉजी में। सुनते हैं तो इसमें फर्क किया नहीं जाता कि वो वहाँ अखबार का वैल्यू का खुदा के कवानीन का तस्वुर ही नहीं। इसमें कुरान फर्क करता है। सेल्फ वो है कि जो एक आस्थान खुदाबंदी के सामने झुककर सारी दुनिया के मुकाबले में ऊंचा हो जाता, एक मकाम पर झुक वस्तुल वक्त कर, जहाँ झुक जा और खुदा के करीब हो जा, छोटे मानों में छोटे पैमाने के रब बन जा, किबरियाइयां सारी तुम्हारे हिस्से में आ जाए, तेरे संगे दर ने बदल दिया है, ये पस्तियों को फराज में के हजारों अर्श झलक रहे हैं मेरी जबीन नवाजी, एक आस्थान की सिद्धि यहाँ है। वो जिसे मैं तो कहते हैं ना झुकाना, मैं को झुकाना पड़ता है। कहाँ झुका? उसके आस्थान की ऊपर झुका। इस झुक जाने में सारी दुनिया की सरफराजी आ जाएगी। कहा हर जगह सरफराजियों के साथ चलता जाए, वहां जब आओ उस आस्थाने के ऊपर वो हम दाज तक बेरून, वहां इस तरह से तकदर के ना दिखो बस बुद्ध, और उसके बाद वह हम दाज तक बेरून, वहां ये सब कुछ अख्तियार नहीं करते। मोमिन कहीं और नहीं झुकते, सिर्फ वहां झुकते हैं और बाकी दुनिया में कहीं नहीं झुकते। हर जगह की बड़ियाई इनके हिस्से में आती है, वहां की बड़ियाई नहीं होती। वहां वहां पहुंच के वो कहते हैं अल्लाह है अकबर, अकबर है वहां। इसलिए कि डिग्री में नीचे अपने आप की जो किबरियाई है उससे इनकार नहीं है, अपने से बड़ा कहा है उसको। इसे किबरियाई मुजस्तर होती है उस झुकने के अंदर। अब ईगो उसे कहते हैं कि जो कहीं ना झुकना, वहां भी ना झुके। पर्सनैलिटी या नफ्स इंसान का या खुदी उसे कहते हैं जो उसके सामने झुक के सारी दुनिया से ऊंचा होता। किसी ने और इस बार के अंदर ये फर्क हो गया, अगर ये वहां भी नहीं झुकता तो ये इस बार है, तसव्वुर है, शैतान है। इब्लीस से मुतल्लिक कहा था ना कि अबा वस तक बरा, देखिए कहूंगा अबा के साथ वस तक बरा है, सरकशी उसने अख्तियार की। क्यों अख्तियार की? उसके ईगो ने उसे कहा, साइकोलॉजी के स्टूडेंट मैंने अर्ज किया था ना इस और करें, उसके ईगो ने उसको कहा कि नहीं झुकना नहीं। ये इंग्लिशी बात कहता ना क्यों, अब जो मोमेंट जो है उसकी कैफियत ये कि सारी दुनिया के आस्थानों से सब प्रावाना वो गुजर गया। उसने कहा कि नहीं किसी के सामने नहीं किसी माताना जो बैठे एनजीओ किताब अगर हुक्म अगर मरूगा था सुनना जसूर अगर ना से तीन इबाद दीन इन दून इबा, दुनिया में किसी इंसान को इसका हक हासिल नहीं है। खा उसको कानून साजी के अख्तियारात हो, खा हफ्ते हकूम, खा उसके पास हुकूमत की लगान भी क्यों ना हो, नबी भी क्यों ना हो जाए, अल्लाह अकबर, किसी को हक हासिल नहीं है दूसरे इंसान से कहे कि मेरे सामने झुको। लेकिन ये भी नहीं है कि वो ये कहे कि किसी के सामने न झुको, लिन दून अल्लाह कहे कि सिर्फ खुदा के सामने झुको। अकबर वो है वहां झुको। ये है अजीजा ने मन, जहां ये ईगो पर्सनैलिटी बन जाता है, समझ रहे हैं आप, जहां ईगो पर्सनैलिटी बन जाता है। पर्सनैलिटी वो मोहकम खुदी है जो अखबार खुदावंदी के सामने झुककर अपने अंदर अलूम पैदा करती है। ईगो वो है कि जो कुवत के भरोसे धर्म के ऊपर अपने आप को बड़ा समझता है। पुराने करीम ने बड़े मुख्तलिफ मकामात में इसके मुताबिक फर्क किया है। आज के मुताबिक ये है कि वो अलूम बगैर हक को करे, बगैर हक। अजीब बात है कुरान, उसने अलूवन या इस बात को नहीं कहा कि ये मायूब है, ये जुर्म है। अलूवन बगैर हक, और उसकी तस्वीर थी कि वो कहते थे अलूवन बगैर हक के मुतलक या इस बार बगैर हक कमाना शब्दों में ना कुत। अब बात साफ हो गई, कहते थे कि हमसे ज्यादा किसके पास कुत है, यानी जो महज फिजिकल पावर के जोर के ऊपर अपने आप को बड़ा समझने लग गए, ये इस्तिकबार है, ये सतना था दुनिया के अंदर। और जो इंसानी खुद ही बेमोहतमीजत पैदा करता चला जाए, उसके मकाम बुलंद करता चला जाए, कैसे खुदा के सामने झुकता हुआ, उसकी अखबार के सामने सीधा रेज होता हुआ इसको बुलंद करता चला जाए, ये वो इस्तिकबार है जो मोमिन का हक है, ये बगैर हक नहीं है। इस्तिकबार बगैर हक। हाँ, एक दो रेफरेंस इतना दे दूं। इस्तिकबार बगैर हक, अजीब आयत, मकाफात अमल की बात आ रही है, क़यामत समझ लीजिए, जहन्नम में इनको भेजा जा रहा है। ज़हन में ये एतराज आमतौर पर आया करता है कि ये बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो मुसलमान नहीं होते कहते कि ये ना मुसलमान नहीं होते, इस्लाम नहीं लाते, हत्ता के खुदा को भी नहीं मानते और अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं। क्या उनके नेक काम जो है उनका कोई अजर नहीं उनको मिलेगा? नेक काम का तो अजर मिलना चाहिए, हर काम का अजर मिलना चाहिए, नतीजा जो हुआ उसका भी तो होना चाहिए। अब एक शख्स हयाती आखिरत तो मानता ही नहीं, और बकौल इनके नेक काम करता है, वो डेफिनेशन ही नहीं मालूम कि नेक कहते किसको, नेक तो लफ्ज़ी फारसी है। कुरान की बात करो तो पता चले होता क्या है, नेक काम करता है, चलो जी अच्छे काम करता है, फिर उसका बदला उस जिंदगी का तो मानता ही नहीं। सुनिए अजीजा ने मन, कुरान क्या कहता है, कहा कि ये लोग जो हैं, ये टाइप, ये कैटेगरी, ये इसका रेफरेंस लिखिए, बोलिए हम आए थे 40/20 तेने जो जहन्नम में भेजने लगेंगे तो वो कहेंगे कि अल्लाह हमने तो बहुत अच्छे अच्छे भी काम किए थे, उसका भी तो कोई बदला मिलना चाहिए हमको यहाँ। गालिब तो और तरह से कहता है, ना करदा गुनाहों की भी हसरत भी मिले दाद, यारा बगैर इन करदा गुनाहों की सजा है, क्या बात है, ना करदा गुनाहों की भी हसरत भी मिले दाद। वो कहेंगे कि अल्लाह हमने अच्छे अच्छे भी काम किए थे, तो उनका बदला तो मिलना चाहिए, तू तो आदिल है। वो ऐसे ही कहते, क्या बात है, कुरान कहता है कि तुम उसी जिंदगी में लिजीव करते थे ना, दुनिया की जिंदगी में, इससे आगे तो नहीं। अब हब तुम तैयबात तुम सी हयात तुम दुनिया वस्तम ता तुम जहा, जिस जिंदगी में तुम बिलीव करते थे उस जिंदगी में उसका अजर तुम्हें मिल गया। जो ये बिलीव नहीं करता इसमें हयात आखरत के अंदर, अच्छा काम करता उससे पूछो तुम क्यों ये काम करते, क्यों का कोई जवाब नहीं। और वो जो मन का अंदर प्योर है ना, अनकॉन्शियस माइंड, वो तो इसकी जगह इसके सिले से, इसके बगैर तो कोई काम कर ही नहीं सकता अभी, जब तक पहले दिल के अंदर ये कारूना पैदा हो, और कोई सिला और जगह नहीं तो दुनिया में तारीफ कराना तो बड़ी चीज है, और सबसे बड़ी जगह या सिला तो ये होता है। क्यों करते हो? तो कुरान ने जो दुख की रग पकड़ दी, तुम उसी जिंदगी में बिलीव करते थे, उसी जिंदगी में तुम्हें इसका जो मिला अजर तो वो मिल गया, यहाँ तो तुम बिलीव नहीं करते थे तो इसको यहाँ आके उसका अजर कैसे तुम मांगते। हल जाओ मतुद जाओ ना अजाब अल हाउ ने, ये है जो लफ्ज जिसके लिए मैंने ये आयत सोची है, अजाब अल हाउ ने, अजाब अल हू ने, दिमाग तुम तक तक बेरूना फिल अर्द बगैर हक, तुम दुनिया में बड़ा बनते थे, इस्तिकबार था, सरफसी बरतते थे, तकब्बुर इसको कह दीजिए, ये बगैर हक, या इस ये जो है इसके साथ कुरान ने शर्त लगा दी, इससे नजर आया कि अगर हक के लिए इस्तिकबार है तो वो तो मोमिन की शान है, उसके बगैर वो मोमिन हो ही नहीं सकता। और अगर हक के बगैर इस्तिकबार है तो ये है जो जहन्नम की इलामत है, ये है जिसे ईगो कहेंगे। जिद में और रसूल परस्ती में एक फर्क होता है। रसूल परस्ती भी बाहर अगर आप देखें तो जिद ही होती है ना बात की, नहीं साहब मैं तो असूल का आदमी हूँ, मैं इसमें नहीं छोड़ता। इस्लाम तो ऐसे असूल देता है जिनमें वो लचक भी नहीं रखता, तोड़ना तो एक तरफ रहा, शिद्दत से उसके ऊपर वो कहता है अमल करो, कार बंद रहो, जमते रहो, इस्तेकामत होती है उसमें, लोट नहीं होती, मुफाहमत नहीं होती, मदाहमत नहीं होती। तो आम अल्फाज में बहुत बड़ा जिद्दी होता है, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं मुफाहमत ही नहीं कर सकता। ये है वो चीज जो हक के ऊपर है, वो मुफाहमत कर नहीं सकता। बातल दूरी पसंद है, हक लाशरीफ है, क्रिकेट में आना है, हक को बादल न कर सकूं, ये तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते। तो क्या कहेंगे इसको, बड़ा जिद्दी है। इस जिद के बगैर तो दुनिया में हक पनप ही नहीं सकता। हक परस्त को तो बड़ा ही कोटेज में कहूंगा जिसे कहते हैं, बड़ा जिद्दी होना पड़ता है। लेकिन वैसे जिद्दी होना तो एक बड़ा ऐब है। ये कौन सी जिद है जो ऐब है, बगैर हक गलत बात के ऊपर अड़के बैठ जाना, ये है जिसे कहते हैं। ये है कुरान ने बार बार जब ये कहा कि बगैर हक इस्तिकबार जो है ये है सेवाए शैतान, वो आज कौन है आज माने शब्दों में इन्होंने पूजा में बताया ना कि इस्तिकबार कैसे हासिल होता है। वो जो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया था ना शैतान ने, हलक का नहीं मिल रहा, मेरे पास आग ही आग है, मेरे पास आग तो तकलीफ है, जला देने वाली चीज, तमीर तो नहीं है इसके अंदर, बड़ी कुवत है उसके पास, लेकिन कुवत किस काम की नहीं आती है, ना तकरीर के लिए इस्तेमाल करता है, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए, इससे ये जो बात पैदा होती है ना, कुवत ही इसके माने है जो कुरान ने कहा है, जो उन्होंने कहा माना शब्द मिलना कुवत है, कुवत कुवत हम ही कुवत, अपने ही गर्दों की तस्वीर के लिए, अपने ही मफाद के असूल के लिए, सैडिज्म के माते कमजोरों और गरीबों को कुचलने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ये कुवत, ये जो इससे मैं पैदा होती है ना, ये है सब, ये है अभाव व सच बड़ा। बाद मकामात ऐसे हैं कुरान ने अजीब अंदाज से उनको बयान किया, कहा ऐसे भी लोग हैं, ये जो मैंने जिद की बात कही है, तो दिल एक बात को तस्लीम करता है कि बात तो लिखी है, कहता तो ये बात तो यही सच्ची है जो ये कह रहा है, इसके बावजूद नहीं मानते। क्यों नहीं वो मानता, वो रास्ते में ईगो खड़ा हो जाता, वो मैं नहीं मानने देती। ये देखा ना, ये मैं किस माने में आई है, और इसका मजाहरा तो रोज होता है, दिल मान रहा है, मैं नहीं मानने देती, ये है ना शैतनत वाली मैं, ये है ना ईगो के रास्ते में आ गया है। पुराने करीम ने फिरौन के मुतल्लिक कहा, वजहदू बिहा वस्तैकनत हा अन्फुसुहुम ज़ुल्म व अदु, कहा दिल से तो वो कायल हो गए थे अंदर, तो बात जो कह रहा है मूसा है तो यही सच्ची बात, लेकिन ज़ुल्म व अदु वो जो मैं का इस्तिकबार था और वो जो कमजोरों के ऊपर जुल्म करने में लज्जत मिल रही थी, वो इसे तस्लीम नहीं करने दे। यहां से पता चल गया अलूम जो कुरान ने कहा है, हालांकि मोमिन को तो आलूम कहा है, अलूम का बुलंद तरीन दर्जा, इस अलूम में और उस अलूम में क्या फर्क है, वो हक का झंडा लेके उसको बुलंद करता है और इस तरह से उसके सबके में खुद बुलंद हो जाता है। ये इस्तिकबार है, जुल्मन वालूबन कहा है, कमजोरों पर जुल्म करता चला जाता है और अपने जहन में अपने आप को बड़ा समझता चला जाता है। ये है वो इस्तिकबार। इसको एक दूसरे में ये था 27:14 एक मुकाम पे कुरान दो लफ्ज लाया है अजीजा ने मान और कीजिए और घूम जाइए क्या क्या चीजें कह जाता है कौन सा मकाम नहीं। वाइजा पीला ना हुत्ता किल्ला आखा जात हूँ इज्जत को दिल की दो बता दोस्तों थी जो लफ्ज इसने लाया है आखा जात हूँ इज्जत को दिल आमतौर पर बात समझ में नहीं आती कि ये इज्जत के माने अरबी जुबान के अंदर इज्जत होती है अजीज साहब वंदव करते हैं कहते हैं कि जब इनसे ये कहा जाए तो सवारी खुदाबंदी की इशावत करो ठेकेदार करो उनके मुताबिक तुम उनका इतबा करो उसके सामने झुको कहते अखल रख ये चीज उनको पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? वो जो अपने अंदर गाँव में बातिल होता है अपनी कुवत का अपने गलते का वो चीज उनको पकड़ लिया कहा जाता पकड़ लेती है कि ना झुकना। ये तो कहा कि बजाम खेत वो समझते हैं ये हमारी कुवत है कहा दिल इस्म के माने होता है इसमें हिलाल मुजमैन हो जाना कमजोर हो जाना कहा कि जो इस तरह से जो कुव्वत के गम में इन कवानीन से सरकशी बरस के गरीबों और कमजोरों पे जुल्म करना है इन्हें पता नहीं कि जिसे ये इज्जत या कुव्वत समझ रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इनको इसमें हिराल करके कमजोर अजाबुल हूर की तरफ ये चली जा रही है। जिल्लत आमेज अजाब का उनके माने बहुत कमजोर हो जाना होता है। ये झूठी इज्जत है समझ रहे हैं कि इससे हम बहुत बड़े मकाम पे पहुंच गए इनको पता नहीं इज्जत दिल इसमें क्या बात कुरान की दो दफ्त है जिनमें सारी बात वाजिया कर दिया कि अपने जहन में ये इनको बड़ी हुकूमत समझते हैं बड़ा एहतियात समझते हैं ये हमने समझ लिया उनको मालूम नहीं है कि इस किस्म का गलत मकासिद और आरजुओं की तकलीम के लिए या हसूल के लिए गरीबों कमजोरों और के ऊपर जो जाति और जुल्म करने से तुम इसको कुवत कह रहे हो यही तो वो चीज है जो इंसान को तबाह कर देती है। बार हकीकत ये इसमें हिलाल है कुवत नहीं है फहस बहू जहन्नम यही लोग हैं अंजाम कार इनके लिए जहन्नम अजीजा ने मन मैं समझता हूँ बात बड़ी जरूरी शायद कुछ खुश देती आइए थोड़ा सा तर्क मैंने कहा है कि ये ठीक है मैं का सेल्फ का तकाजा यही है कि वो किसी के सामने न झुके लेकिन एक मकाम वो आ जाता है एक आस्ताना वो आ जाता है कि जहाँ झुकने का नाम ही हकीकत में है वो जिल्लत का झुकना नहीं है वो अकदार और वैल्यूज का इत्तेबा है उसकी इताअत करना वहाँ झुकना है तो दोनों चीजें सामने रखनी चाहिए कहीं और नहीं झुकना लेकिन वहाँ जरूर झुकना और वहाँ अगर नहीं झुका तो अपने जहन में आप कितनी ही कुवत समझ लेने में हासिल हो गई है तो कुरान कहता है कि आखिरुल अमल वो जिल्लत और इंतहाई दर्जे की मस्कनत हो हर मकाम के ऊपर सरफराजी है करना है एक मकाम वो है जहाँ झुकना है उस झुकने के अंदर जिल्लत ना महसूस करे वहाँ तुम्हारा ईगो तुम्हारे रास्ते में हायल ना हो जाए उस झुकने के अंदर ही हकीकत में सरफराजी है। कहने के तो इकबाल से भी बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन इस खुश माजू के बाद एक गजल करते हैं और ये भी मैंने कहा है ना कि ये लोग भी इनमें से बाज़ उतार जाते हैं, ऐसी बात कह जाते हैं आम तौर पर नहीं कही जा सकती। जिगर गजल को शायरों ने अच्छा मकाम था, एक जगह एक चीज कह दिया और एक इस्तेमाल वो इस्तेमाल कर दिया है। रुमी आप अहबाब कैसे अप्रिशिएट करें, मैं तो उस चीज को भूल जाता हूँ। ये जो चीज है ना कि एक मकाम के ऊपर झुकना दर हकीकत सरफराजियों का मूजिब होता है। मकाम ऐसा आता है और आना चाहिए कि जहाँ झुक जाए इंसान, वहाँ झुकने में जिल्लत महसूस न करे, फखर महसूस करे। ये है बात, देखिए वो कैसे क्या। तेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या क्या किसी को, तेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या क्या, तुझे है जिगर मुबारक ये शिकस्त फातिहाना, शिकस्त फातिहाना। आहा क्या मेरे जेब में तुझकी निकाल ली, ये उसके ना शिकस्त फातिहाना। तेरे फिर सुन ली, तेरे दिल से टूटने पर है किसी को नाज क्या क्या, क्या कीमत वसूल कर रहा है किसी को तेरे दिल के टूटने पर, है किसी को नाज क्या क्या, तुझे है जिगर मुबारक ये शिकस्त फातिहाना। अजीज मन उसके दरवाजे के ऊपर झुकने में जो तुम शिकस्त मिलते हो, ये शिकस्त फातिहाना है, ये है शिकस्त फातिहाना। झुक जा और आ मेरे गले से मिल जा, शिकस्त फातिहाना। हल्के फुल्के अंदाज में एक और लेंगी ये बात, हल्का फुल्का अंदाज कहा है कि हार जाने में अना की बात थी, हार जाने में अना की बात थी, जीत जाने में खिसारा और है, और है भी बहुत जाने की। ऐसे मकान भी है जहाँ जीत जाने में खिसारा होता है। ये बात उसने मुभम रखी थी जिगर में, और खूबसूरती यही होती है गजल में या शेरियत में कि उसने सजेस्टिवनेस हो, नाइयत हो, खुल के बात न चली गई बल्कि एक इशारे में जिसे इमाइयत गजल की जान होती कि बात इशारे में कहे, खुद इंसान वहां पर पहुंचे। इसने जो कहा है बात खुल के कही, हार जाने में अना की बात थी, वो था जो रास्ते में हायद हो गया, जीत जाने में सितारा और है, लेकिन उसकी जो बात है ना ये है जिगर मुबारक। ये इमाइयत वाली बात जो है ये उस शख्स ने जो कही है ना, ये शिकस्त फातिहाना, ये है हकीकत में इस्लाम, जिसे कहते हैं इस्लाम के माने झुक जाना है। अना की शिकस्त होती है आम अल्फाज में, यही तो इसकी फतह होती है। फर्रू सुजदम बहुम ला यस्तसबिरून, दो टुकड़े मिलाइए देखिए बात कितनी लंबी है। कहा ये झुक जाना तुम्हारा जो है ये वो मकाम था जहाँ अगर तुम झुकते नहीं और इसी तरह सार ऊंचा रखते तो शिकस्त थी। झुक जाना कि जैसे आम मानों में शिकस्त कहा जाए, यही तो सता है हकीकत में तुम्हारी। मोमिन की सिफात ये है कि वो दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन एक रास्ता ऐसा भी आता है कि जहाँ सार उठा के नहीं चलता झुकता रहता। मोमिनों की शान चला आ रहा है किस्सा, انما يؤمن بآيات الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون। ये तलातुम खेलिए हैं, आयात क्या है, अल्फाज क्या है, क्या ध्यान करने चला जा मोमिन के ये सवाल है। और आपने देख लिया साइकोलॉजी में नुकता लगा के भी पर्सनैलिटी और ईगो में फर्क क्या है, कुरान क्यों बयान कर जाता है बात। अब आगे आई मोमिन की कहती है, तताजाफा जुनूबहुम अनिल मजाज यदऊना रब्बहुम खौफ व तमान व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। आम तर्जुमे में आप देखिए तो वही आपके यहाँ वो आ जाएगी तसव्वुफ की जरिए कि वो उनके पहलू बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, खुदा को वो अपने बुलाते रहते हैं डरते हुए समा के साथ दूसरों से अलग हो जाते हैं। जितने बड़े बड़े आप औलिया अल्लाह वजीर इनके मुतल्लिक खुसूसियत से जो बताया गया कि वो रातों को इबादत में मशगूल जाते हैं, सोते नहीं, बिस्तर से अलग हो जाना, सोते नहीं, जब सोते नहीं तो फिर वो अल्लाह की इबादत करते हैं, तो फिर वहाँ इबादत करे जाते नफल पढ़ते रहते, यही होता है। एक रात में वो नहीं थे हजार नफल पढ़ते थे, कभी याद नहीं पड़ता कि दो नफल पढ़ने में वक्त कितना लगता है, हजार में घंटे से कितना टाइम हुआ, रात में देख कितने घंटे होते हैं, हफ्ते पार नहीं पढ़ सकता कि एक रात में पा देने, और 9 लाख हजार ही तुम पता होगा, 9 लाख बाबा वो मेरा गाजी खान के पास है कि उन्होंने 9 लाख मरतबा कुरान शरीफ खत्म किया था अपनी उम्र में। मजाक है, ये कौन हिसाब से उनको पता ही नहीं था, हिसाब से लाले जो गांव का लाला हिसाब किया करता था ना हमारे यहाँ के जिम्मेदार से, जो वो ले लेता था एक दफा कर्जा तो 100 रुपया तो सारी उम्र नहीं छूटता था, तो वो दही के हिसाब से जाता था दादा, 25 लाख तक हिसाब मार दिया, हिसाब जरूर था, कहना जी हाँ साहब, कहना क्या कहना चार ढाया साढ़े सैंती ढेली तेन ऊपर की छती अछतियां मूसा ला दे। आप तो हंसते हैं, कुछ किस्मत है अजीजा ने मान, आपको पता नहीं हिंदू क्या था, ये साने नहीं है, ये वाक्य आज है। खैर, रातों को ये सोते नहीं, इबादत करते रहते, नफल पढ़ते रहते, सोते नहीं, ये जो सारी रात जगाकर और ये जो वली अल्लाह बनाते हैं ना, सारी रात जगा कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुरान में ये खुदा ने ये कहा कि या अय्युहल मुज़म्मिलो, अब मैं बात करूंगा दूसरी तरह के लिए, ये कहते हैं ना तमली वाले खुदा ने ये मुज़म्मिलो तमली वाले, तो नहीं वो छाने महबूबियत है ना, पसंद आ गई अल्लाह। खैर, ये और जगह बताऊंगा मुज़म्मिल क्या होता है। बात ये या अय्युहल मुज़म्मिलो मिल बैला खरीद, ठीक है, रात को भी कामकाज कुछ करना होता है, प्रोग्राम के मुताबिक तरीके, लेकिन थोड़े से वक्त के लिए होना नहाज जरूरी है। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह से पूछा, ये सारी रात जगा के और उनको वली अल्लाह बना रहे, निस्फहु अजिन कुछ मिन हो कलील आज लय, क्यों इन्ना संदुलती है लय का कौन खुशी, कहा इसलिए हम कह रहे हैं कि सारा दिन जो तुमने काम करने हैं वो तो बड़ा प्रोग्राम है, वो उसी सूरत में तू कर सकेगा जो रात को सो रही है, जिन्होंने दिन में सोना होया सारा दिन, तो रात में जागना है या उल्लू है कर दे यह कर दे, इससे बड़ी हस्ती मुकर्रबे बारगाह कौन हो सकती, खुदा ये कह रहा है। और जो मैं बताऊं कि ये मुज़म्मिल की शक्ल में क्यों कह रहा है, बड़ी चीज है अजीबा ने मान, बड़ी चीज है, बाहर हाल ये जो चीज है कि शायद मोमिन ये हैं दूसरों से इनके पहलू अलग रहते हैं, कुरान तो ये कहता है खुदा को पुकारते हैं हाउस में, ये क्या चीज है मोमिन की जो सोते भी कम, 3:189 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ أَرْضُ السَّمَاءِ کی تخلیق میں لیل و نہار کے اختلاف میں حقائق کو اللہ سے دیے ہوئے حقائق کو سمجھنے کی بڑی بڑی ایک نشانی ہے، بہت فرمائی، لیکن کن کے لیے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ وہ جو عقل کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے، یہ کون لوگ ہیں، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، یہ وہ لوگ ہیں قوانین خداوندی کو سامنے رکھتے ہیں، قیاما وقعودا وعلى جنوبهم کھڑے چلتے لیٹے، ان کی کیفیت یہ ہے، کیا کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تخلیق ارض و سماوات کے اندر غور فکر کرتے رہتے ہیں، یہاں وہ آئی بات، کھڑے بیٹھے لیٹے، یہ ہے وہ جو بستروں کے ساتھ پہلو ان کے الگ ہو جاتے تھے، खड़े बैठे लेते जब तो सब करो ना ये जिक्र आता है कि वो गरबा नहीं लड़ा दे रहे थे रात में बैठे जता सब करो ना कि कल के समाव आते वाला और इतनी सबो ताज के बाद इतनी तहसील को तफ्तीश और तजस्स के बाद वो कहते हैं रब्बना मा खलकता हाज़ा ऐ हमारे नस्व नमा देने वाले तूने ये सिलसिला कायनात जो ही बातिल नहीं पैदा किया ये करते हैं मोमिन इस मकसद के लिए वो उनके पहलू दूसरों से अलग रहते हैं। दूसरा रिसर्च स्कॉलर जो है यूरोप के उनकी कैफियत क्या होती है एक एक नुकता दिए हुए सब बैठते हुए गौर करते हुए फिक्र करते हुए चल रहे हैं अफ्रीका के सहराओं में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फिर रहे हैं क्या मंग बकरूद वाला जनूब ही जता सब करूँ अभी हल के समावात है बदर तो ये तो मोमिन नूर की सिफात कुरान ने बताई थी कौन ले गया हमसे दूर से रब्बना मा खलकता हाज़ा बात तूने इस सिलसिला कारगाह कायनात को बिला मकसद पैदा नहीं किया तकरीब के लिए पैदा नहीं किया कहा सुभाना था फकीना अज़ाब अन्नास तू इससे बड़ा बुलंद है कि इतना बड़ा कारगाह कायनात को बिला मकसद पैदा कर दे उसको कहा कि जो इसको ऐसा समझता है वो तो जहन्नमी है यहाँ दुनिया से नफरत का दुनिया एक लाश है उसके चाहने वाले कुत्ते ठीक है चाहने वाले कुत्ते हैं मांग मांग के खाते हैं फिर इस किस्म के लाश का गोश्त रब्बना इन्ना का मन तो उसके लिए नारा फा रख जाए तो कौन सी बात छोड़ू कौन सी लहसुन माँ देने वाले रब्बना सुनने के लिए लहसुन माँ देने के लिए सारा जो ये समझता है कि ये दुनिया ये कायनात यहाँ ये बातिल है तकलीफ के लिए है बे मकसद है नफरत के काबिल है वो जहन्नमी है फकद अख्ज़ैता हूँ वो दुनिया में जलील और ख़ार होकर रहता है बात सीधी सी है जिन कौमों ने भी इस कायनात फिजिकल वर्ल्ड की फितरत की कुवतों को मुफक्कर नहीं किया इन्हें काबिल नफरत समझ अख्ज़ैता हूँ और अगली बात है वो माल इस जाले नीना इन्हें मुनसार खुद जलील और ख़ार होते हैं और दुनिया में भी सच्चे मानों में उनका कोई मददगार नहीं होता जो मोहताज है उसका कोई दोस्त कैसे हो सकता है यदूना रखता हूँ खौफम वतन अन पुकार की प्रोग्राम है सामने कभी ये खौफ होता है कि इसके अंदर बात चीजें खतरात की ना आ जाए वहां भी वो खुदा के कवानीन को दावत देती है कि यहाँ क्या करना है कहीं नजर आता है खुशगवार नताए सामने आते हैं तमाम वहां वो इतराते नहीं है इस चीज के ऊपर के लिए हमारी कारीगरी और जो कुछ कहा वो कहते ये है कि हमने तो सिर्फ डिस्कवर किया है बनाया तो नहीं है उन चीजों को दोनों वो से दोनों में वो खुदा के कवानीन को दावत पुकार की किया और उस सारा कुछ करने के बाद कायनात की कुवतों पर गौर फिक्र किया उनको मुफक्कर किया इतना बड़ा प्रोग्राम है चलते फिरते उठते बैठते उसने मुनहमक में लिए सब कुछ हासिल किया वह मिम्मा रज़क ना हुम जुन से और इस तरह से जो कुछ अब रज़क ना हुम कहा हम उन्हें उनके इस सही काविज के नतीजे में जो कुछ देते हैं वो खुद ही उसको संभाल के नहीं बैठ जाते और ये भी नहीं है कि वो सिर्फ अपने कबीले अपने खानदान अपनी कौम अपने मुल्क तक महदूद रखें आलमीन आलमीन है रब तो आलमगीर इंसानियत के लिए इसीलिए उसने लफ्ज सुकून यही लफ्ज आता है कुरान में और आपको मालूम है कई दफा मैं बयान कर चुका हूँ इंफाक जो है इसके माने होते हैं खुला रखना जिसे जरूरत है ले लो लफ्ज भी इंफाक है कुरान में हर जगह निम्मा रजक ना उन रिजक बड़ा जाने लफ्ज अर्जों के हाँ नशो नुमा के लिए खावो इंसान की जिस्मानी नशो नुमा हो या उसकी इंसानी सलाहियतों की नशो नुमा हो या उसकी जात की नशो नुमा हो इनके लिए जो कुछ भी सामान और वसाइल और असबाब और जराए जो दिए जाए इनके लिए लफ्ज रुज आता है और अरबी जुबान और भी लफ्ज आ सकते थे रिजक में खसूसियत उनके यहाँ ये है कि जिस चीज की जिस वक्त जरूरत हो उसे उस वक्त देना जो है ये रिजक कहलाएगा क्या बात है पर वक्त देना उसे बच्चे की सीट का जो वक्त है उस वक्त आप उसे देंगे तो उसे तो वो रिजिक कहेंगे। अगर वो उसका वक्त जो है आपने डला दिया है क्योंकि दूसरे वक्त में देते हैं तो अरब जुबान के एतबार से उसको रिजिक नहीं देता थे। जिससे ने लोन की ओर ना देता तो हम देना चाहिए। क्या बात है इस काम की और क्या बात है देना इस तरह से और हर जरूरत से बर वक्त देना। जिम्मा रखना हूँ जिनसे तुम लड़कते हैं हर एक के लिए। कहा ये कुछ ये लोग ये है मोमिन जो कुछ ये करते हैं जो कुछ ये फिर ये इस तरह का प्रोग्राम जिसके लिए सर घर में अमल रहते हैं इसके बदले में क्या हम देते हैं। कहा क्या बताएं क्या हम देते हैं आज जो हमने देना है वो तो आज तुम्हारी समझ में भी नहीं आ सकता। फला तालमो नफ तुम माँ उख या नहुम दिन कुर्रत आयो निन नफ सिर्फ कुर्रत आयो निन का आंखों की ठंडक जिसे हम कहते हैं बड़ा जामिया लफ्ज हमारे यहाँ भी पता नहीं अब तो कोई कहती नहीं है नहीं बड़ी दूधी माए कहा करती बच्चा तेन देख के भी अच्छा की ठंड पा जानी कुर्रा से आए कहा आंखों की ठंडक का जो सामान हमने इनके लिए रखा आज तो किसी की समझ में भी नहीं आ सकता कि वो क्या है। इसलिए तो आज जो समझोगे तो अपने शऊर की मौजूदा सतह तक ही समझोगे ना और वो इसके बाद की जो जिंदगी है वो तो तुम्हारी शऊर की सरहद से आगे की जिंदगी है। तो जो आगे की जिंदगी की चीज है इस सरहद इदराक के अंदर उसको कैसे बयान करे बात नहीं समझ में आएगी। वो जो एक जगह कुरान में है लाहौन सीधा मा तक वहाँ मायदून जो है वहाँ जो मांगोगे मिलेगा जो चाहोगे होगा। इसके बाद तो रही है और चाहिए क्या इसके बाद जो मांगोगे मिलेगा जो चाहोगे होगा और उसके बाद है कि वलाना थी है लजीज नहीं हमारे पास इससे भी कुछ ज्यादा है। अरे इससे ज्यादा क्या कहा कि तुम जो मांगोगे तुम चाहोगे वो तो अपने इसी महदूद जहन के मुताबिक चाहोगे और हम तो इससे भी आगे देंगे तुम्हें अल्लाह अकबर। वरना मजबूत कहना चाहे जो मांगोगे मिलेगा जो चाहोगे वो होगा तो कहा हमें पता है कि तुम्हारी मांग और तुम्हारी आरजू जो है वो तो तुम्हारी महदूद जहन की है वो तो महदूद है और वहाँ तो ये मौजूदियत जो खत्म होगी वाला न हमारे पास इससे भी ज्यादा है। वो क्या बात है इसके सुराजी का वला ताजम नफ्सुम्मा उख्तियालहुम मिन कुर्रति आयुनिन जजाम दिमा कानू जा मरून। और इसके बाद ये कहा कि कोई एहसान नहीं हम करेंगे तुम्हारे लिए तुमने तो ये दिन भर मेहनत की होगी शाम को उसकी मजदूरी देंगे तुम देंगे ऐसी कि जो दिन भर तुम सोचते थे ना कि आज इसे क्या किया हुआ है शाम को 10 रुपए मिलेंगे 10 नहीं कुछ और भी मिलेगा और जितना जितनी लज्जत इसके ऊपर कुछ मिलने में होती है बड़ी चीज होती है। और जहाँ कहा कि एहसान नहीं जगाम दिमाग जानू या मरू इसके बाद कहा कि अब देखो ये वो गुरोह हमने बताया था जो इस मकाम पे हमारे आस्था से सरकशी से निकल जाता है और बड़ा अपने आप को कुव्वत वाला समझता है। एक वो है जो वहाँ से झुकते हैं और ये सब चीजें मिलते हैं सब चीजें मिलती हैं उन्हें अफमन काना मोमिन कमन काना फासिकन कहा ये दोनों बराबर हो सकते ये दोनों बराबरी का कुरान ने लाजस्तून खुद कहा है ये दोनों बराबर एक जैसे नहीं हो सकते। कई मकाम हैं जहाँ कुरान ने कहा है अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकते तारीकी और रोशनी बराबर नहीं हो सकती जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता। ला यस्तवून एक लफ्ज है अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फलहुम जन्नातुल मावा नुज़ुलम बिमा कानू यअमलून ईमान और अमल सालिया का नतीजा जन्नात जन्नत में भी जन्नत बागात है जन्नतुल मावा। अब मैं क्या अर्ज करूंगे मावा क्या है जिसे कहते हैं ना कि बागात तुम तो अपने घर में आ गए हो ماں وہ اپنے ہی گھر میں آنے کو کہتے ہیں. اور اگلی بات اس کے اندر اور جو ہے کہ جنت بھی آخری مقام نہیں ہے. ماں وہ یہ کہتے تھے ویسے تو اپنے ہی گھر میں جیسے کہتے ہیں ہم آ جاؤ, لیکن جہاں صرف رات بسر کرنے کے لیے رہا جائے, صبح اٹھ کے آگے اور چلنا ہے. جنت بھی آخری مقام نہیں, سلسلہ ارتقا جنت ماں اور آگے ہے بات بڑی. اپنے ہی گھر میں تم آ گئے, یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا, یہ کوئی خیال نہ ایسے کر لینا کہ تم کو کسی سان کیا مربت کے مارے کیوں دیا. نوزوں کہا تم تو ہمارے مہمان ہو, مہمان تو یہ دیتا ہے جان کر, تم تو ہمارے مہمان عزت کی لیے تھی. لیکن یہ سمجھو کہ خام خواہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ چلتے ہوئے آگے دروازہ کھولا تو مہمان بن گیا. نہیں دماغ جانو یا ملوم, بات ساری عمل کی ہے. سورہ سجدہ کی آیت 19 تک آ گئے, بات آگے بھی چلے گی لیکن مجھے دو تین منٹ آپ کے اور دینے ہیں. میں یہ پہلے عرض کر دوں کہ بہرحال اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنے متعلق کچھ کہنے میں کچھ لکھنے میں ہمیشہ کوئی چیز میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا, دامن گیر ہو جایا کرتی ہے. لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تعارف اپنا نہیں ہوتا, ایک مفید چیز آتی ہے اس کا تعارف ہوتا ہے. درس میں دیتا ہوں, میری زندگی کا مشن یہ ہے, حق یہ ہے, جنون یہ ہے, قرآن کریم کا سمجھنا اور اس کو سمجھا کے چلے جانا. اس کو سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں, ایک ان میں سے درس بھی ہے. یہی چیزیں تحریر کے ذریعے سے بھی آتی ہیں. قرآن کے سمجھانے کے لیے میں نے لغات القرآن رکھ دیا ہے. میں نے لغات القرآن کی وہ عرب جس طرح کے الفاظ کے معنی لیتے ہیں, میں نے لغات القرآن کی روشنی میں سارے قرآن کریم کا مفہوم متعین کیا, ترجمہ نہیں تفسیر نہیں, مفہوم متعین کیا. میں نے تصریف آیات کے ذریعے انسائکلوپیڈیا تہذیب القرآن مرتب کیا تین جلدوں سے. پھر تقاضا جو ہے بڑھتا چلا گیا, میں نے مانو والا کہا کہ نہیں سر قرآن کی تفسیر سر سے آخر تک مسلسل یہ بھی دیتے چلے جائیے. بہت اچھا زندگی ہے, لیجیے مطالب الفرقان کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا. دو جلد اس کی پہلے تھا, پہلی جلد میں تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی صرف 29 آیتیں آئی ہیں, 4,450 صفحے کی کتاب ہے, اس میں بڑے سائز کی. آپ سوچ لیجیے یہ کیا کتنی اس میں آ گیا. تو جیسے ایک درس میں آپ دیکھتے ہیں کتنا کچھ آ جاتا ہے. دوسری اس کی جلد شائع ہوئی وہ 30 آیت سے 112 آیت تک سورہ بقرہ کی صرف پہنچ. اب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ تیسری جلد بھی آ گئی مطالب الفرقان کی, اس میں سورہ بقرہ کی. تو گویا تین جلدوں میں سورہ فاطمہ اور مکمل سورہ بقرہ. یوں تو کہنے کو کہیں گے کہ سب یہ ایک سورت کی تصویر ہے ساری. اس کے آخر میں ایک انڈیکس بھی ہے, اس انڈیکس میں آپ دیکھیے, میرا خیال ہے شاید ہی کوئی موضوع ایسا ہو جو آپ کے ذہن میں آئے اور اس کے اندر آپ کو نہ ملے, اور وہ انڈیکس ان تین جلدوں کا ہے. تو گویا ان تین جلدوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ہی لیجیے نا پوری سورت کے لیے ہے. اس میں اتنا کچھ آ گیا ہے کہ اسلام سے متعلق, زندگی سے متعلق جو بھی اہم مباحث آپ کے ذہن میں آئیں گے ان میں آپ کو مل جائیں. اور ابھی تو سورہ بقرہ ہے, زندگی جو ہے روان ہے تو رواں کا ہے دودھ یا زندہ صحت باقی. آگے اور چلیں گے, یہ ابھی آئی ہے اس کا میں نے یہ بتایا ہے مکمل ہو کے آ گئی, باہر ہے جی, باہر ہے یہ. یہ بھی دیکھ لیجیے گا, ایک اور سلسلہ بھی ہمارے یہاں ہے. میں نے ایک طرح ڈالی کامیاب رہا کہ اسلام کے متعلق جو کچھ بھی تم سنو پڑھو سوچو اس کے متعلق, سوچنے کے بغیر کسی کو تسلیم نہ کرو. یہ کامیابی ہوئی, سوچنا شروع کیا. اور جب سوچنا شروع کیا تو جس چیز کا نام اسلام تھا, جو مروج ہے ہمارے ہاں, اس نے تو قدم قدم کے اوپر شبہات اعتراضات یہ سارے چیزیں ابھری. تو یہ چیزیں پیدا ہوئیں تو میں نے سمجھا کہ ہمارا سیدھا یہ بھی ہے کہ ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے, شکوک کو حل کیا جائے. تو یہ اس طرح سے استفسارات یا سوالات آنے شروع ہوئے خلی اسلام کی طرف, تو ان کا جواب کے لیے اسلام نے ہم شائع کر کے چلے گئے. قسم قسم کے سوالات, قسم قسم کے ان کے جوابات. तो उसके बाद ये तकाजा हुआ कि ये बड़ी मुफीद चीज है, इनको किताब की शक्ल में ले आइए। तो वो पहले हमने वो किताब की शक्ल में लाए, उसका नाम था पुरानी सियासी। वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जमा होती गई और हम उनको जिल्दों में शाया करते चले गए, 3 जिल्दें उसकी भी शाया हो गई। और उसके बाद फिर वो चौथी जिल्द उसकी भी आ गई। इसी फहरिस्त में आप देखिएगा क्या क्या चीजें हैं, किस किस किस्म के एतराजात हैं और किस किस किस्म के उनके कुरान और इल्म व बसीरत की रोशनी में जवाब दिए गए हैं। मैंने जो देखा इन फहरिस्तों को तो मैं समझता हूँ आपके घरों में ये चीज जरूर होनी चाहिए। आम एतराजात, बच्चों को कुछ समझाना हो उनके मुतल्लिक, बिलखसूस स्कूल में जब उन बच्चों को ये बताया जाता है साहब कि वो कपड़ा बिछाओ हुजूर की गुठलियों के ऊपर 1.25 लाख मर्तबा ये पढ़ो और वो इम्तिहान में तुम कामयाब हो जाओगे। और मेरी छोटी सी बच्ची ने कह दिया कि नुस्खे के नुस्खों को कहती थी कि तुम ट्यूशन लो तो फिर कामयाब होगी, तुम पास होगी। तो तुम तो कहती है गुटके गिनने से पास होती है, तो मैं जो ट्यूशन क्यों लूँ, सब देशदार जा के लिए मुसीबत हो गई। तो वो ट्यूशने की अगर गुटका लगवाइया तो बच्ची आगे पूछती है कि हमें ये बताया जाता है आपके घरों में ये बच्चे पूछते हैं किस्म किस्म के सवाल आप करते हैं जिनके जवाब मजहब की दुनिया में नहीं देना हमारे पास है। इस किस्म की चीजें जिन किताबों के अंदर आ गई, अल्लाह ताला का फजल करम है। मैंने तारफ जरूरी समझा कि वैसे नहीं आपको मालूम हो सकता कि इनमें है क्या चीज, मुफीद चीजें हैं। मेरी जिंदगी में इनको ले लीजिए, बाद में भी ये चीजें आती रहेंगी। आपका शुक्रिया।